एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ट्रेवर नोवा की किताब है बॉर्न अ क्राइम, स्टोरीज फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन चाइल्डहुड। ये 2016 में आई थी।
हाँ बिल्कुल, और ट्रेवर नोवा मतलब ज्यादातर लोग तो उन्हें द डेली शो के पूर्व होस्ट के तौर पर ही पहचानते हैं ना।
हाँ हाँ बिल्कुल,
तो वो इस किताब में अपने बचपन की कहानियां सुनाते हैं, पर ये सिर्फ जैसे एक कॉमेडियन की यादें भर नहीं है।
अच्छा,
ये असल में उस दक्षिण अफ्रीका की तस्वीर है जो रंग भेद मतलब अपार्टहाइड के साये में जी रहा था और उससे उभरने की कोशिश भी कर रहा था।
और कहानी की शुरुआत ही मतलब काफी चौंकाने वाली है। उनका जन्म ही जैसा टाइटल कहता है एक अपराध था। जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे।
जरूर जरूर। ट्रेवर का जन्म हुआ 1984 में जोहान्सबर्ग में। उनकी माँ पेट्रिशिया नोम्बुइसेलो नोवा वो एक अश्वेत ज़्वोसा महिला थी और उनके पिता रॉबर्ट वो एक श्वेत स्विस जर्मन थे।
अच्छा।
और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मतलब अपने चरम पर था और वहां का एक कुख्यात कानून था अनैतिकता अधिनियम या इमोरैलिटी एक्ट।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
तो उसके तहत अलग अलग नस्ल के लोगों के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध या उनसे बच्चा पैदा करना वो कानूनी तौर पर जुर्म था।
बाप रे।
तो उनका होना ही, उनका वजूद ही उस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था।
तो ये किताब सिर्फ उनके बारे में नहीं है फिर?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये उस दौर की कहानी है, उस समाज की, और शायद सबसे बढ़कर उनकी माँ की कहानी है, पेट्रिशिया की।
हाँ, उनकी माँ का जिक्र बहुत आता है।
निश्चित रूप से ये कहानी है इंसानी जज्बे की, मतलब मुश्किल हालात में टिके रहने की, शिक्षा की ताकत की, और कैसे हास्य मतलब हंसी मजाक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, वो मुश्किलों से लड़ने का हथियार भी बन सकता है।
हथियार? हाँ।
और सबसे ज्यादा ये एक माँ के मतलब असाधारण प्यार और हिम्मत की दास्तान है। ये दिखाती है कि कैसे वो जो सिस्टम वाला नस्लवाद होता है ना, वो हर छोटी बड़ी चीज पर असर डालता है।
और मुझे लगता है कि पहचान का मुद्दा, कहीं फिट होने की कोशिश, अपनी कहानी कहने की जरूरत, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे हर कोई जुड़ सकता है ना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो।
बिल्कुल सही।
तो चलिए ट्रेवर की जिंदगी के इस सफर के पर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। उनके शुरुआती साल कैसे थे, गुप्त जन्म के बाद?
हाँ, तो जैसा हमने कहा जन्म तो गुप्त था ही
जी,
तो शुरुआती साल छिपने छिपाने में ही बीते। वो पब्लिक में अपने पिता के साथ तो दिख ही नहीं सकते थे।
बिल्कुल नहीं।
और कई बार माँ के साथ भी नहीं। अगर माँ के साथ होते भी थे तो माँ को ऐसा दिखाना पड़ता था जैसे वो उनकी नौकरानी है, या फिर ट्रेवर को सड़क के दूसरी तरफ चलना पड़ता था। और नस्लीय वर्गीकरण में उन्हें कलर्ड माना गया, मतलब मिश्रित नस्ल का, न पूरी तरह श्वेत न अश्वेत।
ये बीच की स्थिति, इसका उनके नजरिए पर क्या असर पड़ा होगा, कहीं का ना होना?
हाँ, ये कहीं का ना होना ही शायद उनकी एक तरह से पहचान बन गया। इसने उन्हें एक बाहरी ऑब्जर्वर बना दिया जो समाज के नियमों को, उसके बंटवारों को ज्यादा पैनी नजर से देख सकता था।
अच्छा।
इसने उन्हें लोगों को, सिचुएशंस को समझने का एक अलग ही नजरिया दिया। और उनकी माँ पेट्रिशिया वो इस सफर में उनकी गाइड थी। वो खुद बहुत मतलब कमाल की महिला थी, बेहद बुद्धिमान, इरादे की पक्की। उन्होंने कई भाषाएं सीखी और एक सेक्रेटरी के तौर पर काम किया,
जो उस दौर में एक अश्वेत महिला के लिए बड़ी बात रही होगी।
बहुत बड़ी बात, बिल्कुल।
ट्रिशिया का किरदार बहुत ही शक्तिशाली लगता है किताब में। उनके बारे में और क्या पता चलता है?
वो बहुत धार्मिक थी, लेकिन उनका धर्म भी मतलब टिपिकल नहीं था। वो ट्रेवर को एक ही संडे को तीन अलग अलग चर्च ले जाती थी।
तीन एक ही दिन में?
हाँ, एक अश्वेतों का, एक श्वेतों का, और एक मिश्रित नस्ल के लोगों का। शायद वो चाहती थी कि ट्रेवर हर तरह की दुनिया देखे, समझे, और सबसे अहम, उन्होंने ट्रेवर को भाषा की अहमियत सिखाई।
हाँ, ये भाषा वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। कैसे पेट्रिशिया ने तय किया कि अंग्रेजी पहली भाषा होगी, पर साथ ही ज़ोसा, जुलू, सोथो, अफ्रीकांस जैसी भाषाएं भी सिखाई।
पेट्रिशिया का मानना था कि अंग्रेजी भविष्य की भाषा है, अवसरों की भाषा है।
सही।
लेकिन वो ये भी जानती थी कि लोकल भाषाएं लोगों से जुड़ने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए जरूरी हैं। और ये जो भाषाई विविधता थी ना, ये ट्रेवर के लिए एक तरह का कवच बन गई। वो खुद बताते हैं कि कैसे भाषा ने उन्हें कई मुश्किल सिचुएशन से बचाया।
वो गिरगिट वाली बात है ना
कमिलियन,
कि कैसे वो भाषा बदलकर किसी भी समूह में घुल मिल जाते थे।
बिल्कुल वही। एक बहुत मशहूर किस्सा है किताब में, जब जुलू बोलने वाले कुछ लड़के उन्हें लूटने वाले थे, लेकिन जैसे ही ट्रेवर ने उनसे जुलू में बात की वो एकदम चौंक गए।
अच्छा?
हाँ, और उन्हें अपना समझकर छोड़ दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि भाषा कभी कभी नस्ल से भी ज्यादा शक्तिशाली पहचान बना सकती है। ये दिखाता है कि पहचान कितनी फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है।
उन्होंने कुछ समय अपनी नानी के साथ सोवेटो में भी बिताया था, सही कह रही हूँ? वो अनुभव कैसा था?
हाँ, सोवेटो जोहानिसबर्ग के बाहर एक बहुत बड़ी अश्वेत टाउनशिप थी। वहां उन्हें प्यार तो मिला, लेकिन अपनी हल्की त्वचा के कारण वो वहां भी थोड़े मतलब अलग थलग ही महसूस करते थे।
वहां भी?
हाँ, उनकी नानी कोको वो उन्हें सजा देने से भी डरती थी। उन्हें लगता था कि ट्रेवर की स्किन पर निशान ज्यादा देखेंगे और कहीं परिवार का राज न खुल जाए।
बाप रे, मतलब डर के अंदर तक बैठा हुआ था।
बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि रंग भेद का डर कैसे रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा बन गया था।
फिर 1994 में रंग भेद कानूनी तौर पर खत्म हुआ। ट्रेवर तब 10 साल के थे, क्या इससे चीजें आसान हो गई उनके लिए?
देखिए, कानूनी बाधाएं तो हट गईं, लेकिन जो समाज में और दिमागों में बंटवारा था वो रातों रात तो नहीं मिटता ना।
हाँ, वो तो है।
बल्कि नई तरह की मुश्किलें और जटिलताएं पैदा हुई। ट्रेवर को एक मॉडल सी स्कूल में एडमिशन मिला। ये वो स्कूल थे जो पहले सिर्फ श्वेतों के लिए थे।
अच्छा।
और अब रंग भेद के बाद नस्लीय एकीकरण की शुरुआती कोशिशों के तहत सबके लिए खोले जा रहे थे।
तो वहां भी वो बाहर ही रहे होंगे एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, श्वेत बच्चों के लिए वो अश्वेत थे, अश्वेत बच्चों के लिए वो पर्याप्त अश्वेत नहीं थे।
ओ, ये तो मुश्किल स्थिति है।
हाँ, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने एक बड़ा अनोखा तरीका निकाला। वो स्कूल कैंटीन, जिसे टक शॉप कहते थे, वहां से सबके लिए खाना और स्नैक्स लाने वाले टक शॉप गाय बन गए।
टक शॉप गाय?
हाँ, इससे उन्हें स्कूल के हर गुट में, चाहे वो एथलीट हो, पढ़ाकू हो या नियम तोड़ने वाले, सबके बीच आने जाने और संबंध बनाने का मौका मिल गया।
ये तो बड़ी स्मार्ट तरकीब थी।
हाँ, ये अनजाने में उनका पहला बिजनेस वेंचर था, जो शुरू तो हुआ था अपनेपन की तलाश से।
और फिर किशोरावस्था आई, वो तो वैसे भी मुश्किल दौर होता है, और वो अलेक्जेंड्रा जैसे इलाके में रह रहे थे।
हाँ, अलेक्जेंड्रा या एलेक्स जैसा उसे कहते हैं, जोहानिसबर्ग के पास एक बहुत घनी आबादी वाला, गरीबी और अपराध से जूझता हुआ टाउनशिप था वो।
अच्छा।
तो वहां गुजारा करने के लिए ट्रेवर और उनके दोस्तों ने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, जैसे पायरेटेड सीडी बेचना, पार्टियों में डीजे बनना, शायद थोड़ा बहुत चोरी का सामान खरीदना बेचना।
अरे, ये तो काफी जोखिम भरा रास्ता था।
बहुत ज्यादा, लेकिन इसने उन्हें सड़क की समझ दी। मोलभाव करना, लोगों को पढ़ना, टीम बनाना, रिस्क लेना, ये सब स्किल अनजाने में उनके भविष्य के करियर के लिए एक तरह की ट्रेनिंग बन रहे थे।
लेकिन इसी रास्ते पर चलते हुए वो कानून के चक्कर में भी फंसे थे ना?
हाँ बिल्कुल, वो गिरफ्तारी वाला वाकया।
हाँ हाँ।
वो अनजाने में एक ऐसी कार चला रहे थे जिसकी नंबर प्लेट नकली थी, जो शायद उनके सौतेले पिता की वर्कशॉप से आई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक हफ्ता जेल में बिताना पड़ा।
एक हफ्ता जेल में?
हाँ, और ये अनुभव उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। जेल की दुनिया, वहां की कठोर सच्चाई, इसने उन्हें उस थोड़ी बहुत गैंगस्टर वाली छवि से बाहर निकाला। उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी जिंदगी कितनी आसानी से बर्बाद हो सकती है।
हाँ, ये तो आंखें खोलने वाला अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल, इसने उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित और वैध रास्ता खोजने के लिए मोटिवेट किया।
और इसी दौर में उनके सौतेले पिता एबिल, उनका उनकी जिंदगी में आना हुआ।
हाँ, उनकी माँ ने एबल नाम के एक मैकेनिक से शादी की। शुरू में वो शायद ठीक लगे होंगे, लेकिन जल्दी उनका हिंसक और शराबी रूप सामने आ गया। घर में घरेलू हिंसा शुरू हो गई।
ओह।
एबल की जो पारंपरिक सोच थी वो पेटिशिया के आजाद ख्यालों से टकराती थी, और इसका नतीजा अक्सर हिंसा होता था, जिसे ट्रेवर को देखना पड़ता था। ये उनके जीवन का एक और बहुत मुश्किल और दर्दनाक पहलू था।
ये किताब उनके स्टारडम तक पहुंचने की कहानी नहीं बताती है ना, ये ज्यादातर उनके शुरुआती सालों पर ही फोकस करती है।
बिल्कुल सही, ये किताब उनके स्टैंड अप कॉमेडियन बनने या द डेली शो तक पहुंचने का सफरनामा नहीं है, लेकिन ये उन सभी अनुभवों, स्किल्स और नजरिए की नींव रखती है जिनसे उनका वो भविष्य बना।
अच्छा।
भाषा पर जो पकड़ थी, लोगों को समझने की क्षमता, मुश्किल हालात में भी हास्य ढूंढ लेने की कला, भीड़ को पढ़ने का वो डीजे वाला अनुभव, ये सब उनके कॉमेडी के लिए मतलब रॉ मटेरियल बने।
तो एक तरह से ये किताब ही उनकी ओरिजिन स्टोरी है। मतलब अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सच्चाइयों में बदलना और उस पर सामाजिक टिप्पणी करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब थोड़ा उनके मूल दर्शन और उन मूल्यों पर बात करते हैं जो इन सारे अनुभवों से निकल कर आए। उनका नजरिया कैसा बना?
हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। सबसे पहली बात तो मुझे वही बाहरी आंतरिक वाली लगती है। उनका ये मानना है कि पहचान कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि संदर्भ के साथ बदलती रहती है, परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। जैसे वो गिरगिट वाली बात थी,
हाँ, कैमेलियन वाली,
भाषा बदलकर माहौल में ढल जाना। भाषा उनके लिए सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, बल्कि पहचान बनाने और संबंध बनाने का एक औजार थी।
हाँ, वो कहते भी हैं भाषा रंग से ज्यादा ये तय करती है कि लोग आपको क्या समझते हैं। बिल्कुल। और हास्य, उनके लिए हास्य का क्या मतलब है कॉमेडियन होने के नाते?
देखिए, उनके लिए हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक हथियार है, सत्ता पर, पाखंड पर, बेतुकेपन पर चोट करने का जरिया। रंग भेद जैसी क्रूर और मतलब अतार्किक व्यवस्था की बेतुकी बातों पर हंसकर वो उसे एक तरह से शक्तिहीन करते हैं।
हाँ, ये बात सही है।
ये भावनाओं को काबू में रखने का तरीका भी है और विरोध जताने का भी।
और उनकी सोच में सिस्टम की समझ भी काफी गहरी लगती है ना?
हाँ, वो सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत की बात नहीं करते, बल्कि उन अदृश्य ढांचों को भी देखते हैं जो मौके बढ़ाते या घटाते हैं।
हाँ,
बिल्कुल। उनकी माँ अक्सर कहती थी, किसी को मछली दोगे तो एक दिन का पेट भरेगा, मछली पकड़ना सिखाओगे तो जिंदगी भर का। ट्रेवर इसमें एक लाइन जोड़ते हैं, और बेहतर होगा अगर साथ में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी भी दे दो।
आहा, ये बढ़िया है।
हाँ, ये दिखाता है कि वो समझते हैं कि सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, संसाधन और अवसर भी जरूरी हैं, और इन्हें अक्सर नस्ल, वर्ग और न्याय की जो व्यवस्थाएं हैं वो नियंत्रित करती हैं।
सही बात। उनकी प्रेरणाएं क्या रही होंगी, मतलब क्या चीज उन्हें ड्राइव करती थी? जाहिर है पहली तो सर्वाइवल, गुजारा करना।
हाँ बिल्कुल, गरीबी और हिंसा के माहौल में टिके रहना। दूसरी, अपनेपन की एक गहरी तलाश, क्योंकि वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होते थे, इसलिए लोगों से जुड़ने की उनकी इच्छा बहुत तेज थी।
हाँ, ये समझ आता है।
और तीसरी, शायद अपनी माँ को गौरवान्वित करना, पैट्रिशिया ने जो बलिदान दिए थे उन्हें सार्थक साबित करना।
और मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका, उसमें क्या खास है?
एक तो लगता है व्यावहारिकता, मतलब प्रैक्टिकलिटी, स्थितियों का विश्लेषण करना, उनसे सीखना और खुद को ढाल लेना।
अडेप्ट करना।
हाँ, अडेप्ट करना। दूसरा, हास्य, जो शायद उन्हें माँ से विरासत में मिला, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म।
हाँ, मुश्किलों से जूझने का तरीका।
और तीसरा, जबरदस्त लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, दर्द को महसूस करना पर उसमें डूबना नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ना, कभी खुद को पीड़ित मानने से इनकार करना। पहली घटना तब हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। उनकी माँ ट्रेवर और उनके छोटे भाई को लेकर एक मिनी बस टैक्सी में जा रही थी। ड्राइवर का बर्ताव खतरनाक होने लगा और माँ ने खतरा भांप लिया।
अच्छा, फिर?
उन्होंने एक धीमी गति के सिग्नल पर दरवाजा खोला, पहले ट्रेवर को चलती गाड़ी से बाहर फेंका और फिर खुद छोटे बेटे को लेकर कूद गई।
क्या, चलती गाड़ी से फेंका?
हाँ, ये सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। इसका असर क्या हुआ होगा ट्रेवर पर?
ये घटना कई लेवल्स पर ट्रांसफॉर्मेटिव थी। इसने ट्रेवर को उनकी माँ के जबरदस्त प्रोटेक्टिव नेचर और मुश्किल हालात में तुरंत फैसला लेने की क्षमता का साक्षात अनुभव कराया।
हाँ बिल्कुल।
इसने उन्हें सिखाया कि खतरा कितना रियल और करीब है, और बचने के लिए कभी कभी कितने कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये दिखाता है कि पैट्रिशिया का प्यार सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक बचाव भी था।
और दूसरी घटना?
दूसरी घटना थी उनकी गिरफ्तारी और जेल में बिताया हो एक हफ्ता, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। चोरी की गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा जाना, भले ही अनजाने में।
हाँ,
ये क्यों इतना महत्वपूर्ण मोड़ था?
क्योंकि इसने उन्हें सिस्टम की कठोर सच्चाई से रूबरू कराया। जेल के अंदर की दुनिया, वहां का पदानुक्रम, हिंसा का खतरा, इसने उन्हें अपनी वल्नरेबिलिटी मतलब भेद्यता का एहसास कराया।
अच्छा,
वो जो कूल या स्ट्रीट स्मार्ट वाली छवि थी वो टूट गई। इसने उन्हें साफ दिखा दिया कि एक गलत कदम उन्हें कहां ले जा सकता है। ये उनके सड़क वाले जीवन का एक तरह से अंत था, और इसने उन्हें अपनी प्रतिभा के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ रास्ता खोजने को मजबूर किया।
और तीसरी, शायद सबसे दर्दनाक घटना, हाँ, वो थी जब उनके सौतेले पिता एबेल ने उनकी माँ पैट्रिशिया को गोली मार दी। तलाक के कुछ समय बाद एबेल ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मारी, एक पैर में और एक सिर के पिछले हिस्से में।
ओ गॉड।
हाँ, और वो चमत्कारिक रूप से बच गईं। गोली उनकी जान लेने से चूक गईं।
अविश्वसनीय। इसका असर क्या हुआ ट्रेवर पर?
यह उनके बचपन का लगभग अंत था। यह घरेलू हिंसा का सबसे भयानक रूप था जिसका उन्होंने सामना किया था, लेकिन साथ ही ये उनकी माँ के अदम्य साहस, लचीलेपन और यहाँ तक कि हास्य का भी प्रतीक बन गया।
हास्य ऐसी स्थिति में?
हाँ, अस्पताल में भयानक दर्द में होने के बावजूद उन्होंने ट्रेवर से जो पहली बात कही वो एक मजाक था। उन्होंने कहा, मेरे बेटे देखो, पॉजिटिव सोचो, अब तुम ऑफिशियली परिवार में सबसे खूबसूरत हो।
ये तो अकल्पनीय है, ऐसी स्थिति में मजाक।
यही पैट्रिशिया की खासियत थी। इस घटना ने ट्रेवर को एक झटके में बड़ा कर दिया। इसने उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया और उनकी माँ की लगभग अलौकिक लगने वाली ताकत दिखाई। इसने शायद उनके अंदर के कॉमेडियन को भी आकार दिया, मतलब त्रासदी में भी अब्सर्डिटी को देखने की क्षमता।
इन सारी कहानियों और अनुभवों से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ ट्रेवर नोआ की कहानी है या इसमें हमारे लिए भी कुछ सबक है?
नहीं नहीं इसमें बहुत कुछ है हम सब के लिए। बाहरी महसूस करने का अनुभव, परिवार की उलझने, मुश्किलों से निपटने के लिए हास्य का सहारा लेना, ये बहुत से लोगों के जीवन का हिस्सा है, है ना?
हाँ बिल्कुल।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े पैमाने के अन्याय जैसे रंग भेद और निजी जिंदगी के दुख जैसे घरेलू हिंसा के बावजूद इंसान न सिर्फ टिके रह सकता है बल्कि फल फूल भी सकता है।
और ये भी कि कैसे मुश्किल परिस्थितियां हमें अनजाने में कुछ हुनर सिखा सकती हैं, जैसे ढल जाना, चीजों को गौर से देखना, अलग अलग संस्कृतियों को समझना, अडेप्टेबिलिटी।
त्रिशा की कहानी ये सिर्फ माँ के प्यार की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि प्यार कितना स्ट्रेटेजिक, कितना साहसी और कितना बलिदान भरा हो सकता है।
हाँ,
ये नस्लवाद की क्रूरता और बेतुकेपन को भी बहुत मानवीय स्तर पर समझाती है और पहचान की जटिलता, खासकर मिश्रित नस्ल की पहचान को बहुत संवेदनशीलता से सामने लाती है।
तो अगर हमें इस पूरी बातचीत को तीन मुख्य बातों में समेटना हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक सबक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक स्तर पर सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सक्रिय कर्म है। मतलब लव इज एन एक्शन।
लव इज एन एक्शन, हाँ।
इसके लिए त्याग, रणनीति और जोखिम उठाने की जरूरत होती है। पैट्रिशिया का जीवन दिखाता है कि प्यार का मतलब है दूसरे की भलाई और उसकी संभावनाओं के लिए लगातार कोशिश करना, योजना बनाना और खतरे मोल लेना।
ये बहुत गहरा विचार है। और बौद्धिक स्तर पर क्या कहेंगे?
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये हो सकती है कि जो सिस्टमिक अन्याय होता है, व्यवस्थागत अन्याय, वो सिर्फ अवसर ही नहीं छीनता बल्कि वो हमारी कल्पना की उड़ान को भी सीमित कर देता है। ट्रेवर की वो बात है ना, आप उसी चीज का सपना देख सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे अन्याय हमारी अपनी संभावनाओं को देखने की क्षमता को ही बाधित कर सकता है। इसलिए उन व्यवस्थाओं, उन सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है।
सही बात। और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब अपने जीवन में लागू कर सकते हैं,
वो शायद ये है कि जो चीज आपको अलग या बाहरी महसूस कराती है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत और अनोखे नजरिए का स्रोत बन सकती है। पहचान बोझ भी हो सकती है और संपत्ति भी।
हाँ ये सही है।
ट्रेवल की कहानी दिखाती है कि बदलाव को अपनाना, खुद को ढालना मतलब अडेप्ट करना, और अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना कितना जरूरी है। जो चीज आपको एक कॉन्टेक्स्ट में कमजोर बनाती है, वही किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है।
बहुत खूब, ये सच में सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।